अलौकिक महोवृत्तम ज्ञानिनः केन वर्ण्यते, अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञानियों की चर्या तो अलौकिक होती है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। अहो, वो तो आश्चर्यकारी है कि जहाँ अज्ञानी बंद बांध करके संसार में भटकता है, वहीं वो संसार से पार हो जाते हैं। अलौकिक होता है उनका आचरण, माने स्थान का बंधन नहीं रहा। और इसलिए उसके समाधान स्वरूप हमने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 31 ग्रंथों के प्रमाण देकर के हमने बताया कि साधु शहर में भी रह सकते हैं, बशर्त है साधुत्व की मर्यादा को न छोड़े। मर्यादा छोड़ने पर जंगल में रहने वाला भी संयम को नष्ट कर सकता है, और मर्यादा में रहते हुए शहर में भी भावलिंगी साधु हो सकते हैं। भावलिंगी होते या नहीं, उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। क्या है कि दो चार बातें अपन ने किसी से सुन ली और फिर स्वीकार कर लिया कि नहीं, आज भावलिंगी हो ही नहीं सकते, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। एक पुस्तक पढ़ी थी हमने किसी प्रवचन की, मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें उसका नाम था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आज तो द्रव्यलिंग का ठिकाना नहीं है, भावलिंग तो मिलना मुश्किल है, मैंने तो अपने जीवन में एक भी भावलिंगी साधु नहीं देखे। वो प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें, और वो छपे हुए प्रवचन, कि मैंने अपने जीवन में एक भी भावलिंगी साधु नहीं देखे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप देख भी लेंगे तो क्या भावलिंग आंखों से दिखेगा। पहला प्रश्न ये है कि अगर आप कैसे देखेंगे कि कौन से भावलिंगी है और कौन से द्रव्यलिंगी। कुंदकुंद स्वामी के माथे पर लिखा है कि भावलिंगी है, तो अगर वो आ गए आपके आहार में, मतलब आहारचर्या के लिए अगर वो आपके घर के सामने आ गए कुंदकुंद स्वामी, तो आप कैसे निर्णय करोगे कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी। जिनेन्द्र वर्णी जी ने कहा है कि यदि आप ऐसी नजर बना लेंगे अपनी, ऐसी दृष्टि बना लेंगे कि हर साधु में आप प्रश्न उपस्थित करने लग जाओ कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी, तो फिर साक्षात कुंदकुंद भगवान, कहते हैं कुंदकुंद भगवान भी आपके द्वार से भूखे ही लौटेंगे, उनको आहार नहीं मिल सकता। गणधर महाराज को नहीं देंगे आप आहार, क्योंकि उनके मस्तक पर भी नहीं लिखा है कि भावलिंगी है। कैसे पहचानोगे कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी। इसलिए बाहर से ये पहचानना कठिन है कि कौन द्रव्यलिंगी है कौन भावलिंगी है। जिसकी दीक्षा निर्दोष है, जिसकी चर्या ठीक ठाक है, उसके बारे में शंका नहीं करना चाहिए। और साधु को नहीं मानना तो फिर लाख बहाने हैं। अगर साधु को नहीं मानना तो फिर तो लाख बहाने, आप 6 ऐसे नाम गिना सकते हैं कि मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा है, लेकिन ये मार्ग नहीं है। 6 लोग गलत हुए तो ये जरूरी नहीं है कि 7वां भी गलत हो। अब धन्य कुमार के 7 भाई मारना चाहते थे धन्य कुमार को, और धन्य कुमार उनका हित चाहता था, उनका हित किया क्या उनने। देखो, राजा बनने के बाद भी उनसे कहा कि देखो तुम्हारी कृपा से मैं राजा बनूं, धन्य कुमार ने उनको कुछ बोला क्या गलत। तुम सब धन्यवाद के पात्र हो, धन्यवाद ही दिया धन्य कुमार ने। तो सबको एक तराजू पर तौला नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा अपनी दृष्टि को, कषाय को थोड़ा नरम बनाओ और फिर देखो तो फिर कुछ और नजर आएगा। कषाय के चश्मे से वो रंग ही दिखाई देगा जो कषाय का रंग है। चश्मा उतारने के बाद सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद दिखता है, रंगीन चश्मे में सफ़ेद वस्त्र कभी भी सफ़ेद नज़र नहीं आता। इसलिए ऐसा हठाग्रह उचित नहीं है कि साधु जो ठंडों में बिल्कुल बाहर कड़ाके की ठंड में तपस्या करे वही साधु हैं, बाकी साधुओं को हम नहीं मानेंगे। तो ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ, ये तो अपनी मनमानी हो गई। जिनवाणी में क्या लिखा है ये भी देखो, एक झलक सर्वार्थ सिद्धि में बताया कि पुलाक मुनि वो होते हैं जो भावलिंगी होते हुए भी कभी भी कष्ट नहीं सहना कर चाहते। अब जो साधु कष्ट सहना ही नहीं चाहते, उनको आप ठंड में कैसे खड़ा पाओगे, वो कहां मिलेंगे आपको, ठंड में मिलेंगे क्या कभी। और शैल करते तब शैल, शैल माने पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ के ऊपर कभी खड़े रहेंगे क्या गर्मियों में जाकर के। वो जिनको परीक्षाओं को भी जीतने की भावना ही नहीं है, ऐसे पुलाक मुनि आपकी दृष्टि में तो मुनि हो नहीं सकते, अगर वो दृष्टि बना लें आप, तो कौन सी दृष्टि? कि हम तो उन्हीं को मुनि मानेंगे जो पहाड़ों पर तपस्या करते हैं गर्मियों में, ठंडों में नदी के किनारे अथवा कहीं भी ऐसे सर्दी वाले स्थान पर तपस्या करते हैं, और बरसात में पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं। अब जो मुनि रेगिस्तान में होंगे वो तो मुनि नहीं रहे, क्योंकि वहां पेड़ नहीं मिलने वाले फिर। तो ऐसे मतलब उल्टे सीधे मापदंड से साधु को मापने की कोशिश मत करो, पहले अपनी आत्मा को मापो कि हम कहां कितने पानी में है। साधु का जीवन साधु का जीवन होता है, इसलिए किसी भी बहाने से साधु की निंदा करना अपने लिए हानिकारक है। चर्चा ज्यादा निकल गई, अपन सोच रहे थे कि आज कल्याण मंदिर स्तोत्र प्रारंभ करना है। छह प्रकार के आहारों की बात चल रही थी, लिख लोगे इसको, अपन फिर आगे देखेंगे। आज कल्याण मंदिर स्तोत्र अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनों से लोगों की इच्छा है कि कुछ ऐसी कोई मज़ेदार भक्ति रचना पढ़ने मिले। कल्याण मंदिर इतना सुंदर स्तोत्र है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र में आंसू आते हैं, और वो छह प्रकार के आहार तो सुन ही लो, चलो उसका तो समाप्त कर लो। तो क्या बता रहे, नोकम्मम तिथेरे, तीर्थंकर में नोकर्म आहार होता है, कम्मम नरये, नरकों में कर्माहार होता है, और मानसो अमरे, देवों में मानसिक आहार होता है। मन में जैसे ही आहार की अभिलाषा हुई, गले में अमृत झर गया, आहार हो गया, देवों में मानसिक आहार होता है। कवलाहारो नर पशु, मनुष्य और पशुओं में कवलाहार होता है। ऊजो पक्षीण, पक्षियों में ऊजाहार होता है गर्मी। और लेप रुखाणम, वृक्षों में लेप्याहार होता है। पेड़ जो होता है वो अपनी जड़ों से जो मिट्टी का लेप है उसी से आहार ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो लेप्याहार की प्रधानता पेड़ों में बताई गई है। कभी कोई ऐसा टॉपिक निकल आता तो फिर व्याख्या लंबी हो जाती। चलो, तो जीव समास 85 तिर्यंच गति संबंधी, 9 मनुष्य गति संबंधी, और देव नरक गति संबंधी भी। कितने थे जीव समास? नारे देवात वित्ते दुविहा, 4, निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक। तो ऐसे कुल मिलाकर 98 जीव समास होते हैं, 98। 85 तिरिंच संबंधी, 9 मनुष्य संबंधी, 85 और 9, 94, 94, और फिर निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक देव, 2। निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक नारक, ऐसे 2। तो 94 और 4 कुल मिलाकर के जीव 98 जीव समास वाले होते हैं। इसके बाद पर्याप्तक और अपर्याप्तक की जो चर्चा थी उसमें पर्याप्ति क्या वस्तु है ये बताने के लिए 134वीं गाथा थी, आहार शरीर इंद्रिय निस्सास उस्सास भास मनसाणम परिणय वावार रे सुय जाओ छच्चेव सत्तियो। आहार शरीर इंद्रिय निश्वास उच्छ्वास भाषा और मन, इनकी परिणति रूप व्यापार में जाओ सत्यो, जो शक्तियां लगती है वो छच्चेव, 6 ही होती है। तस्सेव कारणानम पुग्गल खंधान जाहु निपत्ति सापज्जति भण्णदि छब्भिया जिणवरिंदी। तस्सेव कारणानम, उन उद्गल, उन आहार शरीर इंद्रिय निश्वासोच्छ्वास भाषा और मन, इनकी परिणति रूप व्यापार जो है प्रवृत्ति, उसमें कारणभूत जो उद्गल स्कंध है उन स्कंदों की निष्पत्ति यानी संरचना, उनकी पूर्णता जिनवरिंदेही पज्जति सा भण्डदि, जिनवरेंद्रों ने यानी तीर्थंकरों ने उसको पर्याप्ति कहा है। छब भैया, छह भेद हो जाते हैं उसके, क्योंकि ये ऊपर छह गिनाए थे, आहार है, शरीर है, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। पज्जंतिं पज्जतिं गिण्णन्तु मणुपज्जतिं न जावसमणुदि ताण्यवित्ति अपुण्णु मणपुण्णो भन्नदे पुण्णो। पर्याप्ति ग्रहण करने वाला जीव जाव जब तक मणुपज्जतिम न समणोदि, मन पर्याप्ति को जब तक संपूर्ण नहीं करता तब तक निवृत्ति अपुण्य निवृत्ति पर्याप्त होता है। आया समझ में? वैसे इस निवृत्ति पर्याप्त के बारे में दो मान्यताएं, ये मान्यता एक हो गई कि मन पर्याप्ति पूर्ण होगी तो पर्याप्त, मन पर्याप्ति जब तक अपूर्ण है तब तक निवृत्ति पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त की तो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। यहां तो क्या है कि मन पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, बाकी तो पूर्ण हो रही है और हुई भी है कुछ, लेकिन लब्धि अपर्याप्त में एक भी नहीं। अभी आगे बताएंगे। पर्याप्ति को ग्रहण करने वाला जीव जब तक मन पर्याप्ति को समाप्त नहीं कर लेता तब तक निवृत्ति पर्याप्त होता है। मन पुण्यो तो भण्डदे पुण्यो, मन पर्याप्त पूर्ण हो जाए तो फिर पूर्ण अर्थात पर्याप्त कहा जाता है। उत्साह अठारस में भागे जो मर्दिन समाणी दी, एक को भी एक को है, एक का होना चाहिए था। वैसे टिप्पण में देखना जरा, टिप्पण में क्या है? एक का, एक को भी अपज्जति लद्धि अपुण्णो हवे सोदु। इसमें पाठ एक को छपा है इसलिए हमने एक को पाठ किया था। वैसे पर्याप्ति स्त्रीलिंग होता है इसलिए स्त्रीलिंग में एक का शब्द बनेगा, लेकिन प्राकृत व्याकरण में कहीं कहीं पर ये माफ होता है, इधर पुल्लिंग है और उधर स्त्रीलिंग है, चल जाता है प्राकृत भाषा में, इसलिए इतना ज़्यादा उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। नमोकार मंत्र में जो नमो रिहंदाणम आदि पूरा पाठ है उसमें कुछ लोगों ने मात्राओं को लेकर के एक प्ररूपणा की है और कुछ लोगों ने चत्तारी दंडक में परिवर्तन करके पिछली शताब्दी में एक नया पाठ बना दिया है। क्या होता है कि व्याकरण से अगर अपन सब पाठ बदलने लग जाए, अभी अब यहाँ पर ओ की मात्रा सुधरवा दे आपसे, तो फिर हमारे बाद कोई आने वाले वो और किसी मात्रा को सुधरवा देगा उसकी जितनी बुद्धि होगी उसके हिसाब से, और फिर अंत में अपने को कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नहीं मिलने वाली। क्या मिलेगी? वो लोगों ने जो जो परिवर्तन कर करके जो कृति अपने सामने बना करके रख दी, परिवर्तित कृति, वो मिलेगी। तो इसलिए ऐसा करने से नमोकार मंत्र भी अंत में पूरा बदल सकता है, इसलिए अपने को परिवर्तन नहीं करना शास्त्र में, जैसा लिखा है रहने दो। नीचे टिप्पण में दिया ना एक का अर्थ, अपने को वही निकालना है। प्राकृत लक्षण बलात्, कई स्थानों पर प्रवचन सार ग्रंथ में एक जगह आता है, जो जान दि सो नानम, जो जानता है सो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान नपुंसक लिंग है, जो तो जो शब्द नहीं लगा सकते, हिंदी में जो चलेगा, लेकिन प्राकृत में जम जान दि तम नानम ऐसा रूप बनना चाहिए, लेकिन जो जान दि सो नानम लिखा है वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत व्याकरण में कुछ गुंजाइश है, मतलब ऐसा चल सकता है, इसलिए यहाँ पर एको विय पज्जति ये ठीक है पाठ, इसको अपन गलत या सही फैसला न दे, चलने दे। अब क्या पर्याप्तक जीव की परिभाषा क्या बताई थी? निर्वृत्य पर्याप्तक, पर्याप्तक यानी जिसकी मन पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाए सो पर्याप्तक, लेकिन जिसकी मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है बाकी पूर्ण हो गई है वो निर्वृत्य पर्याप्तक। और यहां क्या कह रहे हैं? उच्छ्वास अट्ठारस में भागे जो मरदि, जो उच्छ्वास के अट्ठारहवें भाग में मरण को प्राप्त होता है। याद है आपको एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? 3773, दो तीन के बीच में दो सात, याद करने के तरीके बता रहे हम टेक्निक्स दो तीन है उसके बीच में दो सात लिख दो, तो इतने श्वास एक मुहूर्त में होते हैं। लेकिन आज जो अपन सांस लेते हैं उस हिसाब से आप देखोगे तो नहीं होंगे उतने, क्योंकि एक मिनट में व्यक्ति 12 से 18 बार श्वास ले सकता है, उससे ज़्यादा अगर ले तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ज़्यादा अगर सांस ले ले 18 से तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और कम ले अगर 12 से तो फिर वो कोई बहुत बड़ा योगी होता है। एकदम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, तो ये नॉर्मल जो रहता है 12 से 18 श्वास अगर एक मिनट में है तो 48 मिनट में कितने होंगे, 3773 होंगे क्या, हो ही नहीं सकते कभी। तो एक विद्वान ने अपना विचार रखा था कि संभव है ये गणना छठे काल के अंत में जब एक हाथ का मनुष्य होता है, क्योंकि आकार जितना बड़ा होता है श्वास की गति उतनी धीमी होती है, हाथी बहुत धीमे सांस लेता है और कुत्ता जल्दी लेता है, तो ये आकार पर भी निर्भर करता है। तो जब मनुष्य की आकृति एक हाथ प्रमाण रह जाएगी तब जो श्वास की गति होगी वो संभवतः इतनी होती होगी, यानी मनुष्य अधिकतम श्वास कितनी ले सकता है, तो ऐसा उनका अनुमान था। लेकिन अपन इसको आगम प्रमाण मान करके अंतिम निर्णय न मानते हुए, पंडित जी का विचार उचित है, उनने किया विचार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय अपन जब तक केवली श्रुत केवली नहीं मिलते तब तक कभी अंतिम निर्णय अपन अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। जहाँ तक अपनी बुद्धि के गम में हो विषय वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन छठे काल के अंत समय तक अपनी बुद्धि कैसे चली जाएगी, वो काल अपना विषय नहीं है, क्योंकि अभी कितने हजार वर्ष बाकी हैं। पंचम काल के 21,000 वर्ष जब पूर्ण होंगे तब छठे काल के 21,000 वर्ष और पूर्ण होंगे, तो आखिरी के जो 49 दिन हैं उस समय प्रलय काल होगा, और उन 49 दिनों के समय मतलब मनुष्य की जघन्य सर्व जघन्य अवगाहना होती है। एक हाथ प्रमाण बड़ा होने के बाद मनुष्य का शरीर होता, छोटा फिर कितना होता होगा सोच लो, फुल साइज बताइए उस समय मनुष्य की। पंचम काल में फुल साइज 7 हाथ हैं, और वहां पर छठे काल के अंत में एक हाथ है। तो हो सकता है कि उस समय श्वास की गति ऐसी होती हो, अथवा दूसरा गणित ये भी हो सकता है कि ये जो अपन नासिका से श्वास लेते हैं इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, मेडिकल के भाषा में इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, और फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड होता है, देखो सांस लेते हैं अपन, फेफड़े में श्वास भरती है शुद्ध वायु प्राणवायु ऑक्सीजन, और फिर फेफड़ों के माध्यम से वो हार्ट में जाती है ऑक्सीजन, हार्ट के माध्यम से रक्त संचार में जाते हुए ब्रेन और पूरे बॉडी के हर कोने तक के वो ऑक्सीजन पहुंचती है, और पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लंग्स में पहुंच जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ यहाँ से सांस जो अंदर जा रही है उससे वो फिर लंग्स में ऑक्सीजन भर जाता है, ऑक्सीजन से ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, और जिस ऑक्सीजन का ब्लड शरीर में खर्च हो जिस ब्लड का ऑक्सीजन शरीर में खर्च हो गया था वो फिर से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इसमें बहुत कम समय लगता है, इसकी जो गति है एक मिनट में 72 पर मिनट 72 है। अब इस हिसाब से अगर देखें अपन तो 48 मिनट में कितने होंगे, अगर एक मिनट में 72 है तो 48 मिनट में कितने होंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स अच्छा नंबर, मतलब क्रम से 3 फिर उसके बाद 4 फिर 5 और 6 3 4 5 6 बहुत जल्दी कैलकुलेट किया भाई, अच्छी बात है। तो देखिए ये उससे ज्यादा दूर नहीं है, किससे 3773 से अधिक दूर नहीं है। क्या है कि अपन थोड़ा सा विज्ञान का भी अगर सहारा लेकर के स्वाध्याय करें तो फिर वो बात एकदम वर्तमान में प्रैक्टिकली भी सही समझ में आती है। तो फिर ये कितना दूर है, माइनस करो जरा, 3773 माइनस 3456 लंबा फासला नहीं रहा, 317, सिर्फ 317 का डिफरेंस है। तो संभव है कि वो रेस्पिरेशन को यहां पर ऐसा कहा जा रहा हो, लेकिन फिर भी पारिभाषिक शब्द की तरफ अपन ध्यान दे तो श्वासोच्छ्वास का मतलब यही होता है। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना, लेना नहीं। निश्वास का अर्थ होता है अंदर लेना। ये याद रखने के शब्द हैं, बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स हैं जैन शास्त्रों के। उच्छ्वास का मतलब आपको लग रहा होगा, उच्छ्वास मतलब ऊपर की तरफ अंदर खींचते हुए उच्छ्वास। निश्वास माने निकालना, नी माने निकालना। ऐसे भी कई बार दिमाग चलता है ना लोगों का, तो वैसा नहीं है, ठीक उससे उल्टा है। निश्वास का अर्थ होता है सांस भीतर खींचना, उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस बाहर निकालना। अब चूंकि एक मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास की गणना 3773 दी हुई है, इसलिए अपन भले इसके निकट हो रेस्पिरेशन के, 317 का मात्र अंतर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो वाला चिंतन भी रखो अपने सामने और इसको भी रखो कि करीब करीब इसके निकट। मान लो अब 78 कर लें अपन, या फिर उसको डिवाइड कर लो आप, 3773 को 48 से डिवाइड कर लो, कितना आता है? तो एक मिनट में उतने श्वास अगर चलें किसी मनुष्य के, मतलब उसको अपन पल्स रेट कहते हैं मेडिकल साइंस में, ये जो नाड़ी की फड़कन होती है ना, वो एक मिनट में नॉर्मल मनुष्य की 72 होती है। उसकी एक रेंज है, 72 से कुछ कम कुछ अधिक, तो 72 एक एवरेज है। लेकिन अभी देखते हैं इसमें कितना निकलता है, 3773 अपॉन 48 पॉइंट आएगा कुछ, है ना, 78.5। ठीक है, बिल्कुल सही है, 78 भी नॉर्मल मानी गई मनुष्य की। तो फिर उससे लगता है कि ये सारी बातें जो है, वैसे ही अभी क्या है कि चंद्रमा और गुरु ग्रह और सब ग्रहों के जो इसमें तिलोय पंडित्ती में जो प्रमाण दिए थे, इतने योजन योजन में दिए थे, तो उसको हम लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने नहीं, मतलब जो प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने इस पर मेहनत की, हम भी साथ में वहाँ पर उनके उसमें 2 महीने तक के हमने उनका लाभ लिया था। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन हिंदुस्तान के माने हुए गणितज्ञ हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस है, उनके इंग्लिश बुक्स जापानीज लोग भी पढ़ते हैं, द ताओ ऑफ जैन साइंसेस। तो वहाँ बैठ करके जब वो किया, तो फिर जो चीज़ अपने यहाँ उसमें अपने यहाँ कोई और यूनिट था, उन्होंने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया। तो चंद्रमा के जो निकाले उन्होंने, तो 29 डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक अपने शास्त्रों में जो था वही साइंस में भी था। अब इससे ऐसा लगा कि कहीं समझने में चूक हो रही है, इसलिए अपने को लगता है कि अपना भूगोल और फिर वर्तमान भूगोल कहीं मैच नहीं होता, इसलिए पता नहीं यही सही होगा वर्तमान वाला, और शास्त्रों वाला तो पता नहीं किसने देखा और कब लिखा हुआ है। ऐसी अश्रद्धा बहुत लोगों को होती है, क्योंकि जो इंटरनेट पर सब स्टडी करने वाला व्यक्ति है और विज्ञान से बिल्कुल वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वो कैसे किसी पुरानी बात को सच मान करके सामने जो दिख रहा है उसमें स्क्रीन पर उसको झूठा मान ले। लेकिन जब कैलकुलेट किए तो फिर उसके पेजेस भी उन्होंने हमें दिए थे कुछ, तो वो डिग्रीज जो थे आज की भाषा में वो डिग्रीज में थे, और उस समय के गणित में तिलोय पंडित्ति में वो किसी और यूनिट में थे, तो वो दशमलव के आगे 2 बिंदु तक एक समान अंक थे, उसके बाद में अंतर था। और अंतर हो भी सकता है काल के अनुसार, कदाचित किन्हीं पदार्थों में गति में और फिर और परिणामों में फर्क पड़ भी जाता है, तो उस हिसाब से देखने पर लगता है कि ये सारी बातें अगर विज्ञान से भी अगर मैच करके अपन चले तो कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी। अब अगर नहीं मिलती तो फिर ये समझना कि शायद मेरे में चूक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आगम गलत हो, क्योंकि आगम केवली भगवान के वचन है, और केवली भगवान तो पूरे 3 काल को जानने वाले हैं, तो उनकी बात गलत इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि वो झूठ भी नहीं बोलते थे। आज के लोग तो झूठ भी बोलते हैं, और आज के वैज्ञानिक लोगों में भी राजनीति का प्रवेश कई स्थानों पर देखा गया है, कई बातें जानबूझ करके दबा दी जाती है, स्पोर्ट्स में भी और साइंस में भी, जबकि ये सबसे निर्दोष क्षेत्र थे दोनों, लेकिन जमाना इतना विकृत हुआ कि स्पोर्ट्स और साइंस में भी राजनीति का प्रवेश हो गया, तो वहां भी करप्शन आ गया। लेकिन आगम कभी भी करप्ट नहीं हो सकता, आगम कभी भी गलत नहीं हो सकता। आगम की बात को अगर आप आंख बंद करके भी स्वीकार कर लो तो ये नियम है कि आपका हित होगा, अहित नहीं होगा। आंख बंद करके स्वीकार करने पर भी अहित नहीं होगा आगम की बात को। कुछ बातें ऐसी है जो सबकी समझ में नहीं आ सकती, वो सिर्फ आदेश प्रमाण होती है। आगम जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहा है वो सामान्य मनुष्य के लिए उपदेश हो सकता है, लेकिन भक्त और शिष्य के लिए वो आदेश ही होता है। अपने आराध्य का उपदेश भी आराधक के लिए आदेश समान होता है, इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन मेरे लिए पूर्ण प्रामाणिक है। ऐसी श्रद्धा जब तक नहीं होती तब तक अंदर का जो तत्वार्थ श्रद्धान और आत्मा अनात्मा का जो भेद ज्ञान है वो सब यथार्थता की श्रेणी का स्पर्श नहीं करता, यानी वो सच्चा नहीं हो सकता, वो सब कल्पित होगा। क्योंकि जब तक देवशास्त्र गुरु पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान न हो तो उस श्रद्धान के बिना वो सारे तत्वार्थ श्रद्धान आदि संभव नहीं है। श्रद्धान मजबूत होना चाहिए और इसके लिए युक्ति भी लगाओ ना। ऐसा नहीं अंधश्रद्धान करने की बात नहीं चल रही है, श्रद्धान करने के पहले खूब परीक्षा कर लो, जितनी करना है कर लो। जैसे अभी शांति सागर महाराज श्री के आचार्य श्री के स्मृति दिवस पर अपन ने देखा था, एक घटना सुनी थी। 8 दिन तक परीक्षा लेने के बाद गुरु माना उनको पंडित जी ने, तो आचार्य महाराज ने क्या बोला, आचार्य श्री ने ये नहीं कहा कि देखो पंचम काल के कैसे पापी जीव है, गुरु की भी परीक्षा लेते हैं। आचार्य श्री ने ये बोला कि परीक्षा करके तुमने गुरु माना है, अच्छा किया, बोले अब बहकोगे नहीं। क्या अब बहकोगे नहीं, मतलब तुमने खुद निर्णय किया ना, तो अब बहकने का सवाल ही नहीं। बहकता वो है जो किसी की बातों में आता है, जो परीक्षक होता है सत्य का पारखी बहकावे में नहीं आता। ये वाक्य लिख लेना चाहिए, सत्य का पारखी बहकावे में नहीं आता। तो उच्छ्वास के 18वें भाग में, अब देखिए विचार करने की बात है, ये एक श्वास में जो जीव 18 बार मरने वाला है, कितने भाव होते हैं एक मुहूर्त में? क्षुद्र भाव की बात पूछ रहे हैं, बतलाए थे उस दिन 66,336। तो 66,336 एक मुहूर्त में होते हैं, तो फिर एक श्वास मतलब ये हुआ एक मुहूर्त में 66,336, एक मुहूर्त बराबर 3,773 श्वास, ठीक है। 3,773 को 18 से गुणित कर दो, 66,336 आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब अगर अध्ययन करते हैं ना, तो अगर सीधा सीधा अध्ययन करते हैं तो बहुत भारी भारी लगता है, कैसा क्या गणित चल रहा है, लेकिन इसको समझ कर पढ़ते हैं ना तो फिर आनंद आता है। आगे 18 से गुणा किया, देखो क्लास वर्क करोगे तो फिर ठीक रहेगा, ऐसा नहीं कि चलो महाराज ने कह दिया और बाकी बाजू वाला बोल रहा है चलो ठीक है होगा, ऐसा नहीं, खुद भी कर लो। कैलकुलेटर इधर इस साइड बैठे हुए हैं कुछ अंतर पड़ रहा है? अंतर पड़ना तो नहीं चाहिए कायदे से। 3773 × 48 इसको उससे भाग देना है, हाँ इंटू 18 ही करना पड़ेगा, ठीक है 18 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर उसको भाग दे दो इससे, 66,336 को इससे भाग दे दो 3,773 से, कितने आते हैं? या फिर राउंड फिगर में देखना, इसको होमवर्क दे दें, अगली बार करके ले आना है ना, क्योंकि अभी अपने को कल्याण मंदिर स्तोत्र का स्वाध्याय भी करना है।